سورت الفاتحہ کے آغاز میں جو ہے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ تعوذ کسے کہتے ہیں. تعوذ جو ہے یہ عین واو زال سے ہے, اور عین واو زال کے معنی ہے پناہ مانگنا, حفاظت میں آنا, کسی سے التجا کرنا. اس کے دامن رحمت میں جو ہے وہ رحمت کے دامن میں آنا. تو جب ہم جو ہے وہ تعوذ پڑھتے ہیں, آپ کو پتا ہے تعوذ کسے کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جب ہم یہ پڑھتے ہیں تو ہم اللہ کی حفاظت میں آتے ہیں اور شیطان سے پناہ مانگتے ہیں. اللہ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں اپنی رحمت میں لے لے. آپ دیکھ لیجئے کہ جب ہم تعوذ کے ذریعے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے ذریعے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں اور شیطان سے بچنا چاہتے ہیں, ایسا ہم کیوں کرتے ہیں؟ اس کے لیے اللہ رب العزت نے خود ہمیں حکم دیا ہے کہ جب ہم قرآن مجید کی تلاوت شروع کریں تو اس سے پہلے جو ہے وہ ہم تعوذ پڑھ لیا کریں. سورت نحل آیت 98 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ, کہ پس جب تم قرآن کی تلاوت کرنے لگو تو شیطان رجیم سے, شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں آ جایا کرو, اللہ سے جو ہے اللہ کی حفاظت مانگا کرو. تو قرآن مجید کی تلاوت کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا بھی ضروری ہے, لیکن بسم اللہ سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ضروری ہے. اور اس کی دلیل کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے سورت نحل کی آیت 98 میں ہمیں خود حکم دیا. پھر اسی طرح سے شیطان مردود سے بچنے کے لیے اس کے جو شر ہیں اور اس کی جو چالیں ہیں, ٹرکس ہیں, اس سے بچنے کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ضروری ہے. سورت العراف آیت 199, 199 اور 200, 200, اس میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا, وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. تو اس میں بھی یہی بات فرمائی کہ شیطان جو ہے جب تمہیں جو ہے وہ ورغلانے لگے تو تم جو ہے وہ اللہ کی پناہ جو ہے اس میں آ جایا کرو. پھر اسی طرح سورت المومنون آیت 97 98 میں فرمایا, فَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَةِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ. ایسے بعض لوگ پوچھتے بھی ہیں نا کہ ہر وقت جو ہے, حتیٰ کہ نماز میں بھی کھڑے ہوتے ہیں تو دل میں خیال آ رہے ہوتے ہیں, یا یہ کہ بہت برے برے خیال آتے ہیں, اچھا کام کرنا چاہتی ہوں لیکن پھر دل ایک طرف کو ہونے لگتا ہے اور بری باتیں سوچنے لگتی ہوں, یا خیال آتے ہیں, یا برے دوست ہیں, یا بری صحبت ہے, اسے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو اس کے لیے یہی جو ہے وہ بہترین طریقہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے, اور وہ کیا ہے کہ شیطان سے پناہ مانگی جائے اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آیا جائے. کیونکہ شیطان جو ہے یہ انسانوں میں سے بھی ہیں اور جنوں میں سے بھی, اور یہ ہمارے دشمن ہیں, اور شیطان جو ہے کسی حال میں بھی انسان کی بھلائی نہیں چاہتا, وہ ہر وقت یہ چاہتا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ نیکی کے کاموں سے جو ہے وہ روکتا رہے. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب رات کو نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو تکبیر کہتے, پھر کہتے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک, پھر 3 بار کہتے لا الہ غیرک لا الہ غیرک لا الہ غیرک, پھر کہتے کہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے, اور یہ بھی کہ من حمزہ و نفخہ و نفسہ. اور اسی طرح حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ 2 آدمی نے رسول اللہ کے پاس آپس میں گالی گلوچ کیا. 2 لوگ تھے رسول اللہ کے پاس آپس میں ایک دوسرے کو گالی دے رہے تھے, ان میں ایک کا غصہ اتنا زیادہ ہوا ऐसा मालूम होता था कि उसकी नाक गुस्से से फट जाएगी। आपने फरमाया, मैं एक ऐसा कलमा जानता हूं जिसे अगर वो कहे तो उसका गुस्सा खत्म हो जाए। हजरत मुआज बिन जबल रजी अल्लाह उन्होंने पूछा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन सा कलमा है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यूं कहे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊजु बिका मिनश शैतानिर रजीम। इस हदीस को मुस्नद अहमद, अबू दाऊद, तिरमिजी, निसाई ने रवायत किया है। तो आम हालात में भी जब गुस्सा आ रहा हो, या ये कि शैतान जो है वो वरगला रहा है या कोई साजिश कर रहा है, क्योंकि वो अलवसवास है, अलखन्नास है, तो उस वक्त भी हमें जो है ये तावुज पढ़ना चाहिए, आउजु बिल्लाह पढ़नी चाहिए। और खास तौर पर जब कुरान की तिलावत करने लगे, कुरान की क्लास में बैठ रहे हैं, कुरान का सबक याद कर रहे हैं या हिफ्ज कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो उस वक्त जो है वो तावुज जो है हमें पढ़ना चाहिए। इसलिए कि जब आप नेकी का काम करना चाहते हैं तो शैतान पहले तो जो है वो आने नहीं देता। जैसे मसलन अब आप देखें कि हंड्रेड तक जो है ये कुरान की क्लास का हजारों तक पैगाम पहुंचा होगा, बहुत से लोगों तक, कि आप कुरान की क्लास में आए तो नहीं, मेरी ये मसरूफियत है, अभी मैं जवान हूँ, अभी ईट ड्रिंक मैरी और डाई के दिन है, अभी तो मेरे घूमने के दिन है, अभी तो दोस्तों के हैं, अभी मैं एमए कर लूँ, एमबीबीएस कर लूँ, अभी मैं आईटी में हूँ, मैं डॉक्टरी की पढ़ाई, अभी मैं फार्मासिस्ट बन रही हूँ, मुझे मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि अभी मैं कुरान का कोर्स करूँ। हालांकि इस्लाम जो है दूसरी तालीम को भी हासिल करने का हुक्म देता है कि मुसलमान जो है वो एक दुनिया में एक कामयाब इंसान है, कि दुनिया में भी हसाना और आखिरत में भी हसाना। लेकिन याद रखें कि ये सारी डिग्रियां, डॉक्टरी की, फार्मेसी की, आईटी की, या आर्ट्स की, या किसी भी चीज की डिग्री जो है वो यही धरी की धरी रह जाएगी, और दुनिया से जब हम जाएंगे तो साथ क्या लेके जाएंगे? क्योंकि जब मरने के बाद इंसान फौरन ही जब कब्र में जाता है तो कब्र में फरिश्ता जो उसे सवाल पूछता है तो वो क्या सवाल है? मन रबुक, मन रसूलुक, मा किताबुक, कि तेरी किताब क्या थी। और कुरान मजीद जो है ये मौत के वक्त भी इंसान के लिए जो है वो उसकी मौत आसानी से आती है, कब्र उसके लिए जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाती है, जो कि कुरान के कोर्स को जो है वो करता है। और कुरान के कोर्स को करने का मतलब कुरान को पढ़ना, समझना और उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को ढालना। तो इब्तदा ही में जो है वो हमें क्या करना चाहिए? अऊज़ु बिल्लाही मिनश शैतानिर रजीम जो है वो पढ़ना चाहिए। तो अऊज़ु जो है इसका रूट क्या है? ऐन वाव ज़ाल, मानी है पनाह मांगना। तो किससे पनाह मांगनी है? शैतान से बचना है। और किसकी पनाह में आना है? अल्लाह की पनाह में, बिल्लाही साथ अल्लाह के। और जो है इलाह का लफ्ज जो है ये इसका रूट है अल्लाह का, अलिफ लाम हा, और अल्लाह, अल्लाह का जो है ये नाम, ये अल्लाह का जाती नाम है, अल्लाह के नामों में सबसे बड़ा, सबसे जामे, और बाज उलमा तो इसे इसमें आजम भी कहते हैं। ये नाम अल्लाह के सिवा किसी और का नहीं है, इसका ना तस्निया आता है और ना जमा। अल्लाह वाहिद है, इसका कोई शरीक नहीं, और अल्लाह जो तमाम सिफाते कमाल का जामे है, तमाम सिफाते रबूबियत के साथ जो है वो मुत्तसिफ है और वो बेमिसाल है। तो हम अल्लाह की पनाह में आते हैं। अऊज़ु बिल्लाही मिनश शैतान, मिन से, अशैतान, शैतान। शैतान जो है इसके तीन रूट हैं, तीन मादा। एक है शीन तोए नून, इसके मानी है दूर होना, दूर रहना। जैसे अरबी जबान में बेरुन शतून, बहुत गहरा कुआं, जैसे जो कुआं जो है जिसके जिसका पानी बहुत दूर हो, तो उसके लिए भी ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, बहुत नीचे तक डिगिंग करके जब हासिल करते हैं। तो शैतान के लिए का रूट शतन, दूर। तो ये दूर क्यों आया? इसके मानी असल में ये है कि जो है शैतान हक से दूर है, हर भलाई से दूर है। इसी तरह इसका दूसरा रूट या मादा है शीन अलिफ तोए, इसके मानी है गुस्से से जल जाना, भड़कना। और शैतान को जो है शात इसलिए कहा जाता है कि वो आग से पैदा हुआ है, और वो हसद की आग में जलता रहता है, हासिद है। इसी तरह इसका एक और रूट भी है, शीन या तोए। इसके मानी होते हैं जैसे खाना पका रही है, सालन है, हांडी है, कुछ भी चीज चूल्हे पर है, उसका पानी बॉयल होने लगे, जोश आए, उसके लिए भी लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। तो वो गुस्से में जो है वो जोश खाता रहता है शैतान। तो शैतान अर्रजीम, अर्रजीम का लफ्ज जो है राजीम मीम से निकला है, रजम। रजम करने के मानी होते हैं जैसे रजम के मानी है कि किसी को पत्थर मारना, पत्थर के लिए भी रजम का लफ्ज इस्तेमाल होता है। लतकूनन्ना मिनल मरजुमीन, कुरान में भी ये लफ्ज आया है। तो हम जो है शैतान, शैतान जो के हासिद है, जो आग से बना है और बाकी इंसानों को भी आग में डालना चाहता है, इसीलिए उनको जो है वो बुराइयों की दावत देता है और जो है वो बुरे ख्यालात लाता है, और वो चाहता है कि इंसान गुस्से में आए। और जैसे अब अगर हम जो है कुरान की क्लास से पहले या कुरान की तिलावत से पहले अगर हम आउज़ुबिल्ला नहीं पढ़ते, तो इसका मतलब क्या है कि शैतान जो है अब वो कोशिश करेगा कि नीयत ही ठीक ना रहे, इखलास ना रहे, या ये कि क्लास में बैठे हैं लेकिन गैर हाजिर हैं। तो तावुज़ जब पढ़ लेंगे तो इंशाल्लाह फिर अल्लाह की पनाह में आ जाएंगे। फिर दूसरी चीज जो बहुत अहम है वो ये कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का पढ़ना जो है वो जरूरी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आप देखिए कि सूरत अल-फातिहा इसकी 7 आयात हैं और जो है वो 7वीं आयत जो है वो बिस्मिल्लाह है। इस सिलसिले में जो है वो उलमा में इख्तलाफ है। उलमा जो है वो ये कहते हैं कि बाज लोग ये कहते हैं कि क्या हर सूरत की जो है वो हर सूरत की मुस्तकिल आयत है बिस्मिल्लाह। एक राय ये है कि हर सूरत में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उसकी मुस्तकिल आयत है। दूसरी राय ये है या कि हर सूरत की आयत का हिस्सा है, मुस्तकिल आयत तो नहीं है, लेकिन आप जैसे यूं समझ लें कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिर्रब्बिलआलमीन ये एक आयत है, तो इसका मतलब क्या है कि आयत का हिस्सा है। और अगर मुस्तकिल आयत कहेंगे तो मानी ये है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलग है और अल्हम्दुलिल्लाहिर्रब्बिलआलमीन अलग है। या फिर ये कहते हैं कि ये सिर्फ सूरत फातिहा की एक आयत है और बाकी सूरतों में ऐसे ही आई है, हर सूरत से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखी जाती है लेकिन आयत का उस सूरत का जो है वो मुस्तकिल हिस्सा नहीं है। तो इस सिलसिले में जो बात याद रखने वाली है वो ये है कि उलमा ये कहते हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो है स्वाय सूरत नमल की आयत 30 के जो है वो बाकी सूरतों का मुस्तकिल हिस्सा नहीं है। और सूरत नमल की आयत 30 में जो है वहां पे ये आयत आई है जहां पे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जो है वो खत लिखा मलका सबा के नाम, इन्नहू मिन सुलेमान व इन्नहू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो उन्होंने अपने खत की इब्तदा जो थी वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से की। तो ये वो आयत है जो पिछली कौमों पर भी नाजिल हुई, जैसे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने खत में इसको लिखा, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को जो है वो किसी भी काम की इब्तदा में जो है वो कहने से जो है वो बरकत हासिल होती है। इस सिलसिले में ये बात याद रखने वाली है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जब पढ़ी जाती है तो इससे जो है वो अल्लाह की नुसरत मिलती है, अल्लाह की ताईद हिफाजत हासिल होती है। मुस्नद अहमद की रवायत है कि बिस्मिल्लाह कहने से शैतान जलील हो जाता है, यहां तक कि मक्खी की मानिंद हकीर बन जाता है। इसीलिए खाने पीने, जानवर जिबा करने, बीवी से मुबाशरत करने यानी ताल्लुक कायम करने, वुजू करने और बैतुल खुला में दाखिल होने से पहले और तमाम दूसरे कामों के करने से पहले बिस्मिल्लाह कहना मुस्तहब है। तो वो लोग जो हर काम की इब्तदा में जो है वो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, तो बिस्मिल्लाह पढ़ने से जो है वो नंबर 1 इंसान की नियत में इखलास पैदा होता है, और नंबर दो, जब वो बिस्मिल्लाह पढ़ता है, अल्लाह का नाम लेता है, तो सोचता है कि मैं जो काम कर रहा हूं, क्या मैं इस पर अल्लाह का नाम लेने पर हक बेजानिब हूं? मैं कैसा काम कर रहा हूं, मैं कैसा काम कर रही हूं? तो वो सोचने लगता है, तो ये सोच विचार जो है उसको गुनाहों से रोकती है। और नंबर तीन जो है, जब इंसान बिस्मिल्लाह पढ़ता है, तो बिस्मिल्लाह पढ़ने से हमेशा जो है वो काम जब वो करता है, तो उसमें शैतान का हिस्सा नहीं रहता, वरना शैतान जो है वो दखल अंदाजी करता है, फसाद अंगेजी करता है, और शैतान जो है वो इंसान को नेकियों से हटाता है, या अगर इंसान कोई नेकी का काम कर भी रहा है, तो उसका उसकी नीयत में फितूर पैदा करके, खलल अंदाजी करके उसके अजर को कम करने की कोशिश करता है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना जो है ये जरूरी है, कि कुरान मजीद की तिलावत करने करते वक्त आगाज में तावुज अऊजु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम पढ़ा जाए, और फिर उसके बाद जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा जाए। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के मानी क्या है? बिस्मी, सात नाम अल्लाह के, ये बा का लफ्ज जो है ये सात के मानी देता है, कि अल्लाह के नाम से, हरफ एक है बा, और इसके मानी क्या है? सात। मानी यह है कि हम अल्लाह के नाम के साथ जो है वो मदद मांग रहे हैं, हम अल्लाह के नाम से शुरू कर रहे हैं, हम अल्लाह के नाम की बरकत चाहते हैं, बिस्मिल्लाह। और इस्म जो है ये नाम को कहते हैं, अलिफ सीन मीम इस्म नाम को कहते हैं, तो बिस्मी अल्लाह के नाम से। अब यहाँ पे जो है ये दो अल्फाज बहुत अहम है, एक है अर्रहमान और दूसरा है अर्रहीम। अर्रहमान राहामीम से निकला है, ये मुबालगे का सीगा है, इसके मानी है बहुत ज्यादा रहम करने वाला, और रहीम इसके मानी भी जो है वो बहुत ज्यादा रहम करने के हैं। तो रहमान और रहीम में क्या फर्क है? मुफस्सरीन कहते हैं कि रहमान का लफ्ज जो है ये अल्लाह की ये ऐसी सिफत है कि इसमें जो है वो जोशो खरोश पाया जाता है, और अल्लाह ताला जो है बहुत ज्यादा रहम करने वाला है। जैसे दुनिया में अगर देखें तो अल्लाह मुसलमानों पर भी रहम करता है और अल्लाह काफरों पे भी। वो जो अल्लाह के नाफरमान हैं, मुनकिर हैं, मुशरिक हैं, और अल्लाह की जमीन को गुनाहों से भर दिया है, और अल्लाह का दिया हुआ खाते हैं, और फिर जो है वो नमक हरामी करते हैं, न शुक्री करते हैं, तो आप देखें कि अल्लाह उनको भी रिज्क देता है, सूरज हर रोज उन पर तुलू होता है, बारिश उनके लिए भी होती है, और जमीन और आसमान जो है उसके सारे खजाने जो है वो उनके लिए भी जो है वो आम है। और हालांकि जो मोमिन है, जो ईमान लाने वाले हैं, उन पर भी अल्लाह की रहमतों की बारिश हो रही है। तो अर्रहमान के मानी है कि मोमिनों पर भी और काफरों पर भी, सब पर रहम करने वाला, और ये रहमत जो है ये सिर्फ दुनिया तक के लिए है। और जहां तक रहीम है, तो रहीम के बारे में मुफस्सरीन ये कहते हैं कि रहीम का लफ्ज जो है इसमें जो है वो इसमें भी मुबालगा पाया जाता है, लेकिन इस सिफ को तसलसल हासिल है। जैसे जो है वो रहीम के मानी है कि अल्लाह ताला की जो रहमत है ये सिर्फ अपने मोमिनीन के लिए है, और ये आखिरत में होगी, कि वहां पे फिर काफिर जो है वो जब जहन्नुम की आग में जलेंगे तो अल्लाह की रहमत को जोश नहीं आएगा। तो मुफस्सरीन की एक राय ये है कि रहमान फी दुनिया रहीम फिल आखिरा, कि अल्लाह ताला दुनिया में रहमान है, सबके लिए रहमत करने वाला है, और मुसलमान काफिर मुशरिक सब पर एक जैसी रहमतें नाजिल करता है, और रहीम आखिरत में है, वहां पे सिर्फ ईमानदारों पर अपनी रहमतें नाजिल करेगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसमें अर्रहमान और रहीम दोनों मुबालगे के सीगे हैं, दोनों का रूट एक ही है, राहामीम, और रहमान में रहीम की निस्बत इतना ज्यादा मुबालगा है कि रहमान का लफ्ज दूसरे नंबर पर अल्लाह के जाती नाम की हैसियत रखता है। तो अल्लाह का जाती नाम कौन सा है? अल्लाह, बाकी सारे नाम अल्लाह के सिफाती नाम हैं। अर्रहमान अल्लमल कुरान, बहुत ज्यादा रहम करने वाले ने जो है वो कुरान जो है वो सिखाया। अल्लाह ताला को दो नाम बहुत पसंद है, सबसे ज्यादा पसंद है, एक अब्दुल्ला और दूसरा अब्दुर्रहमान। तावुज और तस्मिया, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम और बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम के बाद जो है हम सूरत अल फातिहा का इब्तदा करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तारीफ अल्लाह ही के लिए है जो तमाम कायनात का रब है। अब यहां पर अल्हम्दु लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया गया है। अल अल का लफ्ज जो है अलिफ लाम, ये अरबी जबान में टी एच ई के मानी देता है, दी दा, इसके मानी है खास। तो अल्हम्दु खास तारीफ लिल्लाही अल्लाह के लिए है, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है। हम्द, हम्द किसे कहते हैं, हम्द के मानी है तारीफ के, और हम्द के अंदर जो है वो शुक्र के मानी भी पाए जाते हैं। अब आप देखिए कि आमतौर पे जब हम का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है तो जब तारीफ की जाती है तो तारीफ किस चीज की होती है। मसलन आप देखिए कि अल्लाह ताला ने जमीनों आसमान, सूरज चांद सितारे, कायनात की एक एक चीज बनाई। कभी आप चलती हुई हवाओं को देखती हैं, कभी आप गिरती हुई आबशारों को देखती हैं, कभी आप चहचहाते हुए परिंदों को देखती हैं, और कभी जो है आप रात के वक्त आसमान पर जगमग जगमग करते सितारों को देखती हैं। तो तमाम कायनात के अंदर जो रब्त है, जो एक नज्म व जब्त है, एक तसलसल है, इसको देखकर अकल दंग रह जाती है, और उस पर आप जो है फिर तारीफ करती हैं। और अल्लाह के इन करश्मों और कारनामों पर जितनी भी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। फबिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज्जिबान, फिर तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झूठ लाओगे। तो हम के मानी क्या है, तारीफ के, और हम के एक मानी शुक्र के भी हैं। तारीफ आम है कि आप तमाम चीजें जो देखती हैं तो उसकी तारीफ करती हैं, और शुक्र के मानी क्या है, शुक्र का ताल्लुक उन खास नेमतों से होता है, उस खास इनामात से होता है जिनसे इंसान की अपनी जात का खास एक ताल्लुक हो। मसलन अल्लाह ने इंसान को आसन तकवीन पर पैदा किया, बेहतरीन जिस्म दिया, फिर सेहत दी, रिज्क की फरावानी है, हर तरफ अल्लाह ताला की रिज्क की नेमतों की बारिश है। तो ऐसी नेमतें जिनका आप इस्तेमाल कर रही हैं, उनसे फैज हासिल कर रही हैं, और इनका जब आप एतराफ करती हैं तो आप जो है वो अल्लाह का शुक्र बजा लाती हैं। और ये जो शुक्र है ये कल्बी भी होता है, ये जबानी भी होता है, और ये अमली भी होता है। तो हम्द के मानी है अल्लाह की तारीफ करना और अल्लाह का शुक्र बजा लाना। इसमें जो है वो हमें क्या बात बताई जा रही है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन के सब तारीफ जो है, खास तारीफ जो है वो लिल्लाही अल्लाह के लिए है। अब आप देख लीजिए कि सूरत फातिहा के इब्तदा में हमें जो है वो अल्लाह ताला ने अपनी तारीफ करना सिखाई, और सूरत अल फातिहा जो दरअसल एक दुआ है, अल फातिहा फाता हा से निकलने वाला ये लफ्ज, इसके मानी है खोलना, जैसे कोई चीज बंद है तो उसको खोल दिया जाए, जैसे किसी से कहा जाए इफ्तह अल बाब, दरवाजा खोल दे। तो अल फातिहा कुरान मजीद का दिबाचा, कुरान मजीद का प्रीफेस, या कुरान मजीद का मुकदमा, कुरान मजीद का आगाज, कुरान मजीद को खोलने वाली इसकी चाबी है, क्योंकि अरबी जबान में जो है वो मिफ्ताह चाबी को भी कहते हैं। तो अल्फातिहा कुरान का आगाज करने वाली, कुरान को खोलने वाली, और इसमें हम अल्लाह ताला से जो है वो जब कुछ मांगते हैं तो क्या कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन के सब तारीफ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। और रब, रा बाबा रब, इसके मानी है तीन मानी है रब के, एक है मालिक और आका, नंबर दो परवरिश करने वाला, पालने वाला, निगहबानी करने वाला, और नंबर तीन हाकिम, मुदब्बिर, मुंतजिम। तो अल्लाह इन सब मानों में जो है वो पूरे यूनिवर्स का, पूरी कायनात का, पूरे वर्ल्ड का जो है वो रब है। अब आप देख लीजिए, आप इसको यूं भी कह सकती हैं कि जैसे एक छोटा सा दाना होता है, फिर अल्लाह ताला जो है उसके लिए जो है वो कायनात में ऐसा साजगार माहौल देता है कि एक तरफ सूरज की रोशनी है, दूसरी तरफ जमीन है, तीसरी तरफ हवाएं हैं, चौथी तरफ बारिश है, कि वो दाना जो है वो पल भर कर जो है वो एक तनावर दरख्त बन जाता है। तो एक दाने को तनावर दरख्त बनाने वाला ये है रब की रबूबियत। इसी तरह एक हकीर सा नुतफा, उससे फिर एक जीता जागता इंसान बनाकर खड़ा करने वाला, माँ के पेट के अंधेरों में तीन तीन पर्दों में जो है। अब आप देखें कि एक हकीर से नुतफे से फिर इंसान के जिस्म की हड्डियां, उसके गोश्त, पट्टे, खून, उसके जिस्म के अजा, सारी चीजें बनती चली जाती हैं, और जब वो मुकम्मल इंसान बन जाता है तो खुद ब खुद जो है उसको धकेल कर बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये क्या है? ये अल्लाह की रबूबियत है। ये कौन करता है? ये अल्लाह करता है। और वो अल्लाह कौन है? अल आलमीन, तमाम कायनात का रब है। आलमीन का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। अल आलम जो है ये वाहिद है, और अल आलमीन जो है वो इसकी जमा है। इसके मानी है एक दुनिया, और अल आलमीन के मानी है कि अल्लाह ताला जो है जितनी भी दुनिया है उन सब का जो है वो रब है। जैसे अब आप देखें कि एक इंसानों की दुनिया है, और आप देखें कि इंसान भी कितनी रंगों के, नस्लों के, कद, लबो लहजे वाले, जबाने बोलने वाले, मुख्तलिफ कौमें हैं, मुख्तलिफ कबीले हैं, उन तमाम जो रंग और नस्ल के लोग हैं उन तमाम का रब कौन है? अल्लाह। इसी तरह जिन हैं, फरिश्ते हैं, शयातीन हैं। फिर आप देखें कि एक दुनिया है चींटियों की, एक दुनिया है मछलियों की। आपने अगर जो है वो मछलियों को देखा हो, तरह तरह की मुख्तलिफ रंगों की मछलियां और उनके मुख्तलिफ नाम, तो एक समंदर की दुनिया और फिर मछलियों की दुनिया। इसी तरह आप जानवरों को देखें, बकरियों को, भेड़ों को, आप परिंदों को देखें जो आपके ऊपर उड़ते हैं। तो ये जितनी भी दुनिया है इन सब का रब कौन है? इन सब का रब जो है वो अल्लाह है। तो फरमाया कि रब्बिल आलमीन, कि वो सारी जो दुनिया है वो इनका जो है वो रब है। और इससे ये बात पता चलती है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए जो है वो ये सारी चीजें पैदा करने के साथ, आप देखें शमसी निजाम देखें, सूरज, फिर चांद है, फिर सितारे हैं, तो अल्लाह ताला ने ये सारा निजाम जो है ये पैदा किया है। और हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह नो कहते हैं कि आलम 40,000 हैं, ये दुनिया मशरिक से मगरिब तक एक आलम है, बाकी इसके सिवा हैं, और सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तहां और भी हैं। तो अब आप देखिए कि असल बात क्या है, अल्हम्दु, कि अल्लाह की तारीफ की जाए, अल्लाह का शुक्र बयान किया जाए। और शुक्र क्यों बयान किया जाए? कि इसलिए अल्लाह ताला ने अनगिनत नेमतों से नवाजा है। अनगिनत जो है वो एहसानात है अल्लाह ताला के हम पर। छलक छलक गई आंखें ये सोच कर अक्सर, छलक छलक गई आंखें ये सोच कर अक्सर, कि मेरे रब की हैं मुझ पर अनायतें क्या क्या। और इसी तरह जो है ये बड़ी खूबसूरत जो है वो एक नज़म है, जिसके जो है वो एक दो शेर हैं कि जो मिले हयाते खिजर मुझे, और उसे मैं सरफे सना करूं, तेरा शुक्र फिर भी अदा ना हो, तेरा शुक्र कैसे अदा करूं, तेरे लुत्फ की कोई हद नहीं, गिनूं किस तरह के अदद नहीं, नहीं कोई तेरे सिवा मेरा, किसे याद तेरे सिवा करूं, मैं बहुत ही आजिज़ो बेनवा, तेरे आगे मेरी बिसात क्या, कोई भूल हो तो माफ कर, मुझे बख्श दे जो खता करूं, कभी फूल बन के महक उठूं, कभी शमा बन के जला करूं, तेरे दर पे खम रहे सर मेरा, तेरे दर पे खम रहे सर मेरा, तेरी रहमतों पे गुजर मेरा, मैं कहा करूं तू सुना करे, तू दिया करे मैं लिया करूं। تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بارش ہے ہم پر، اسی لیے اللہ رب العزت نے سورۃ الفاتحہ کی ابتدا میں ہمیں جو دعا سکھائی کہ کیسے اللہ سے مانگو، الحمدللہ رب العالمین، کہ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے، ساری دنیا کا پالنے والا ہے، وہ پتھر کے اندر کیڑے کو دیتا ہے، وہ سمندر کی پانیوں میں گہرائیوں میں مچھلیوں کو بھی دیتا ہے، وہ صحراؤں میں بسنے والوں کو بھی دیتا ہے، وہ جنگلوں میں رہنے والوں کو بھی، اور وہ انسانوں کو بھی دیتا ہے۔ تو اللہ ہی کی تعریف ہے، اللہ ہی کا شکر ہے، اور وہ کیوں نہ بیان کیا جائے، اس لیے کہ فرمایا رب العالمین، جو تمام کائنات کا رب ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ الف لام کے ساتھ اس آیت کی ابتدا ہوئی، تو اس کے معنی یہ ہیں کہ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، اور اگر کوئی حسن ہے، کوئی خوبی ہے، کوئی کمال ہے، اور اگر کچھ بھی کسی کو کوئی فیض ہے، تو نہ وہ کسی انسان کا ہے، نہ کسی فرشتے کا، نہ کسی دیوتا کا، اور نہ ہی کسی مخلوق کا، نہ کسی کا اپنا ذاتی کمال ہے، بلکہ یہ سارا اللہ کا عطیہ ہے۔ جیسے اگر کوئی ڈاکٹر ہے اور اس کے ہاتھ سے مریض کو شفا ملتی ہے، تو اس کا اس میں کوئی کریڈٹ نہیں، یہ کس کی نوازش ہے؟ یہ صرف اور صرف اللہ کی۔ اگر کوئی ڈرائیور ہے اور بہت اچھی گاڑی چلاتا ہے اور اس کا کبھی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا، تو اس کو اللہ کا احسان مند ہونا چاہیے۔ کوئی کھانا پکاتا ہے تو بیسٹ، تو اس کو جو ہے وہ اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے، اللہ کا احسان مند ہونا چاہیے۔ اسی طرح کوئی پڑھائی میں بہت لائق ہے، کسی کو سبق جلدی یاد ہو جاتا ہے، یا یہ کہ کوئی بزنس میں بہت ماہر ہے، یا کمپیوٹر کے اندر بہت ہنر مند ہے، یا کسی بھی آج کے دور کے آپ تعلیم کو لے لیں، کسی بھی چیز کو لے لیں، تو اصل بات کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، حمد اللہ ہی کے لیے ہے، اور کیوں نہ بیان کی جائے جو تمام کائنات کا رب ہے۔ تو یہ حمد اور تعریف جو ہے وہ کیسے بیان کی جائے؟ ابن ماجہ کی ایک روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ ایک شخص نے کہا، یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ ایک دفعہ ایک شخص نے ان الفاظ میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، فرشتے گھبرا گئے کہ ہم اس کا کتنا اجر لکھیں، کیونکہ اس نے کیا کہا تھا کہ یا ربی لک الحمد، کہ اے رب حمد تیرے ہی لیے ہے، کما یمبغی، جیسا کہ تو چاہے، لے جلال وجہی کا، تیرے عظیم چہرے کے مطابق، و عظیم سلطانک، اور بڑی سی تیری عظیم سلطنت حکومت کے مطابق۔ اب فرشتے گھبرا گئے کہ ہم اس کا کتنا اجر لکھیں، آخر اللہ سے عرض کی کہ اے اللہ، تیرے بندے نے ایک ایسی دعا کہی ہے، ایک ایسا کلمہ کہا، ہم نہیں جانتے کہ اسے کس طرح لکھیں۔ اللہ نے جاننے کے باوجود ان سے پوچھا کہ کیا کہا، اور سننے کے بعد جب انہوں نے بتایا فرشتوں نے کہ تیرے بندے نے کہا، یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، تو اللہ رب العزت نے جب سنا تو پھر فرمایا، حالانکہ اللہ خوب جانتا ہے، پھر پوچھا اور پوچھنے کے بعد پھر فرمایا کہ تم یوں ہی اسے لکھ لو، میں خود اسے اپنی ملاقات کے وقت جو ہے وہ اس کا اجر دوں گا۔ تو یہ آیت جو ہے ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہمیں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے، ہمیں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اس سلسلے میں جو ہے اللہ کا جو ذکر کرنا ہے، یہ دراصل اللہ کی محبت کا تقاضا ہے کہ اللہ کی یاد دل میں ہمیشہ رہے، اور جب اللہ کی یاد دل میں ہو تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ پھر زبان پر نہ آئے، اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان جو ہے وہ مختلف ذکر اذکار اور دعاؤں کے ذریعے اس کا اظہار نہ کرے۔ اور یہ جو اللہ کی حمد و ثنا ہے، یہ کبھی سبحان اللہ کے ذریعے، کبھی الحمدللہ، کبھی اللہ اکبر، کبھی لا الہ الا اللہ، اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے کہ لوگوں میں سے ایک شخص نے یہ کلمات پڑھے، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا فسبحان اللہ بکرتا واصیلا، اللہ سب سے بڑا ہے، मैं इस बड़े की बड़ाई करता हूँ और अल्लाह के लिए बहुत ज्यादा तारीफ है और मैं अल्लाह की पाकी बयान करता हूँ सुबह को भी और शाम को भी। इस पर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन कलेमात को कहने वाला कौन है। लोगों में एक शख्स ने अर्ज किया कि मैं हूँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे इन कलेमात पर ताज्जुब हुआ कि इनके लिए आसमान के दरवाजे खोल दिए गए। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ने बयान करते हैं कि जब से मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते सुना मैंने इन कलेमात को कभी नहीं छोड़ा। फिर इसी तरह ये दो कलमे जो खफीफताने अलल लिसाने सकीलताने अलल मीजान, जो जबान पर हल्के और मीजान में भारी हैं, हबीबताने इलर रहमान और रहमान को बहुत प्यारे हैं, और वो दो कलमे सुबहानल्लाही व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अजीम। मैं पाकी बयान करती हूँ अल्लाह की और इसकी तारीफ के साथ मैं पाकी बयान करती हूँ अल्लाह की जो अजमत वाला है। हजरत जवेरिया रजी अल्लाह ना बयान करती हैं कि सुबह की नमाज पढ़ने के बाद सवेरे ही रसूल अल्लाह मेरे पास से बाहर तशरीफ ले गए और मैं अपनी नमाज पढ़ने की जगह बैठी अल्लाह का जिक्र कर रही थी। फिर आप दिन चढ़े वापस तशरीफ लाए और मैं अभी तक वहीं बैठी जिक्र इलाही कर रही थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस हालत में मैंने तुम्हें छोड़ा था क्या तुम इस वक्त से अब तक इसी हालत में बैठी जिक्र कर रही हो। मैंने अर्ज किया जी हाँ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तेरे बाद मैंने चार कलिमात तीन मर्तबा कहे। तुमने शुरू दिन से अब तक जो कुछ पढ़ा अगर इसके साथ इन कलिमात को वजन किया जाए तो इनका वजन बढ़ जाएगा। और वो कलिमात ये हैं सुबहानल्लाही व बिहम्दिही अदद खल्के व रिदा नफ्से व जिनत अर्शे व मिदाद कलिमाते। मैं अल्लाह की पाकी बयान करता हूँ इस तारीफ के साथ इसकी सारी मखलूकात की तादाद के बराबर और इसकी जात पाक की रजा के मुताबिक और इसके अर्श अजीम के वजन के बराबर और इसकी कलमात की तादाद के बराबर। तो ये सूरत अल-फातिहा की पहली आयत जो है हमें ये पैगाम देती है, हमें ये जो है वो सलीका और तहजीब सिखाती है कि हम अल्लाह की हमदो सना बयान करें, हम अल्लाह की कदर शनासी करें, हम उसके एहसान शहनास बने और उसकी तारीफ करें जो कि तमाम कायनात का रब है। और ये तारीफ जो है ये दिल के अंदर होनी चाहिए, ये जबान के अंदर होनी चाहिए और इसके साथ ये तारीफ और शुक्र जो है ये अमली होना चाहिए। मुफ्ती मोहम्मद हसन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कुल्लु मुतीउन जाकिर, हर अतात करने वाला गोया जिक्र करने वाला है। तो जिक्र की और अल्लाह की हम्द और तारीफ और शुक्र की दो किस्में हैं, एक तो अल्लाह अल्लाह करना और दूसरा ये है कि अमल करना, शरीयत की पाबंदी करना। तो हर मामले को अगर कुरान के मुताबिक ढाल दिया जाए तो ये है दरअसल फिर अल्लाह की तारीफ बयान करना और अल्लाह का शुक्र अदा करना। अर्रहमान अर्रहीम, जो रहमान और रहीम है। आप देख लीजिए दोनों अल्फाज का एक ही मादा एक ही रूट रहामीम, और मानी क्या है बहुत ज्यादा रहम करने वाला, रहमान भी है और रहीम भी है। और अल्लाह की हर सिफत का एक तकाजा है, जब अल्लाह जो है वो रहम करने वाला है तो ये सिफत बंदों को भी अपने अंदर जो है वो इख्तियार करनी चाहिए, अपने अंदर पैदा करनी चाहिए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इरहम मन फिल अर्द यरहमो का मन फिस समा, जमीन वालों पर तुम रहम करो आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। और आप देखें कि वो रब जो 70 माओं से बढ़कर जो है वो मोहब्बत करता है, जो हम पर रहमत की बारिश करता है, तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम जो है ऐसे काम करें ताकि अल्लाह की रहमत जो है हमें ढांप ले। अल्लाह की रहमत लहजा लहजा मुंतजर है, हर आन हर घड़ी जो है हमारा इंतजार कर रही है। तो आइए हम सब जो है ऐसे काम करें, ऐसे अपने आप को अल्लाह की बंदगी में जो है वो दे दें कि अल्लाह की रहमत की बारिश जो है वो हम पर होने लगे। फिर फरमाया मालिक यौमिद्दीन, रोजे जजा का मालिक है। मालिक मीम लाम का इसके मानी है मालिक होना, मलकियत, तो मालिक मालिक है, यौमी दिन, अदीन दीन का। अब आप देखें कि अरबी जबान बड़ी वसी जबान है और इसमें एक लफ्ज जो है ये मुख्तलिफ मानों में इस्तेमाल होता है। जैसे दीन का लफ्ज कुरान में तीन मानों में जो है वो इस्तेमाल हुआ है। जैसे दीन के मानी कयामत के दिन के हैं, जैसे यहाँ पे कयामत के दिन के मानी में इस्तेमाल हुए, मालिक यौमिद्दीन के रोजे जजा का मालिक है। इसके दूसरे मानी जो है वो जिंदगी गुजारने के तरीके के हैं। जैसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरत आल इमरान में फरमाया, इन दीना इंदल्लाह इस्लाम, कि अल्लाह के नजदीक दीन जो है वो इस्लाम है। और इसके तीसरे मानी जो है वो किसी बादशाह के मुल्क के कानून के भी हैं। और सूरत यूसुफ में ये लफ्ज जो है वो मुल्क के कानून के मानी में इस्तेमाल हुआ है। और अब यहां पर जो है इसके मानी है कि कयामत के दिन का मालिक है। ये जो आयत है कि मैं लिखी या उम्मीद दीन के रोजे जजा का मालिक है, ये आयत ये बताती है कि एक दिन ऐसा आएगा कि जब दुनिया का मौजूदा निजाम जो है ये खत्म हो जाएगा और सारी दुनिया जो है जब खत्म हो जाएगी, सूरज चांद सितारे जो है इनको जवाल आएगा, इंसान मर जाएंगे। और जब जो है ये जैसे कुरान में अलगाशिया, अलकारिया, सूरत नबा और सूरत जिलजाल, बहुत सी सूरतों में जो है वो कयामत की मंजर कशी की गई है। और इसके मानी है कि उस दिन अल्लाह ताला अगली पिछली तमाम नस्लों को जमा करेगा और इंसान की जिंदगी के जो अमाल हैं उनका हिसाब लिया जाएगा। हर इंसान को इसके अमल का पूरा पूरा सिला या बदला दिया जाएगा। हर इंसान की नेकी की जजा भी उसको मिलेगी और हर इंसान की बदी की जजा भी जो है उसको मिलेगी। हर शख्स ने दुनिया में जो कुछ किया था, अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है उसका बदला जो है वो उसको देंगे। तो फिर क्या करना चाहिए? मैं लिखी या उम्मीद दीन, ये आयत पढ़ना, इस पर ईमान रखना, दरअसल अकीदा आखरत की याद दहानी है। इस आयत में, इस सूरत में पहली दो आयात में अकीदा तौहीद बयान किया गया और आयत नंबर जो ये वाली जो है मैं लिखी या उम्मीद दीन, इसमें जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अकीदा आखरत जो है वो बयान किया है। ये बात हमारे सामने रखी कि ये दुनिया जो बड़ी खूबसूरत नजर आती है, ये दुनिया जो बड़ी हसी है, तो कहीं ऐसा ना होना कि दुनिया ही की इज्जत शोहरत, इसकी दौलत और इसकी रानाइयां और इसकी नेमतें जो हैं उसको हासिल करने में लगे रहना और फिर आखरत को जो है वो भूल जाना। याद रखना कि एक वक्त ऐसा आएगा कि फिर तुझसे जो है जो कुछ भी अल्लाह ने तुझे दुनिया में दिया था, जो नेमतें थी और जो तेरे पास इल्म था, जो माल था, जो तेरे पास कुव्वतें और सलाहियतें थी, इन सब का भी हिसाब किताब जो है वो होगा। मैं लिखी यौमिद्दीन, वो रोजे जजा का मालिक है। अब आप देखिए कि हर आयत का लिंक दूसरी आयत से है, कि सबसे पहले तौहीद की दावत है और ये कि बहुत रहम करने वाला है। फिर अब आगे कहा कि रोजे जजा का मालिक है, इसका मतलब ये है कि ऐसे ना हो कि बाज लोग ये समझते हैं कि अल्लाह बहुत ज्यादा रहम करने वाला है तो इसलिए अमल करने की जरूरत ही नहीं। कहा कि इसके साथ साथ जो है ये बात भी याद रखें कि एक वक्त ऐसा आएगा कि अल्लाह ताला फिर अदल भी करेगा, इंसाफ भी करेगा। तो अल्लाह की एक खूबी, अल्लाह की एक सिफत अल्लाह की दूसरी सिफत से नहीं टकराती। अगर अल्लाह बहुत ज्यादा रहम करने वाला है, एट द सेम टाइम अल्लाह ताला जो है वो बहुत ज्यादा अदल करने वाला भी है। कयामत के दिन अल्लाह बिलाल हबशी रजी अल्लाह अनहो और अबू जहल का अंजाम एक जैसा नहीं कर देगा, बल्कि जो है वो अदल करेगा। दुनिया में भी लोगों को जो है अदालतें लोगों के अमाल की उनको सजा या जजा देती हैं, लेकिन यहाँ पे ये जो सजा और जजा है ये कमाल दर्जे की नहीं है, मुकम्मल नहीं है, जुजवी है। मसलन किसी ने अगर एक किसी ने कत्ल किया है, एक दो तीन चार, और अगर उसको फांसी भी दे दिया जाए तो एक ही उसकी जान जो है ना उसको फांसी दी गई, हालांकि उसने कई कत्ल किए थे। तो इसी तरह दुनिया में जो है सजा और जजा जो है अगर किसी को दी जाती है तो उसमें पूरी तरह जो है वो अदल नहीं होता, और ये अदल जो है ये कयामत के दिन जो है वो किया जाएगा। और मैं लिखी यौमिद्दीन का मतलब यह है कि हम कयामत के दिन की सख्ती से, उसकी पकड़ से, उसके मुहासबे से डरे और उसकी तैयारी करें। अल्लाहुम्मा हसिबना हिसाबन यसीरा, ये दुआ रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मांगा करते थे। और हमारी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम ये दुआ जो है ये मांगे भी, और उसके साथ साथ जो है हम आखिरत के दिन की तैयारी करें। फिर इसके बाद फरमाया इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। अब आप देखें कि अब तक जो आयात पढ़ी थी इसमें अल्लाह की हम्दो सना और अल्लाह की तारीफ थी, और अब ये जो आयत है इस आयत में एक तरफ हम ये इकरार करते हैं कि इय्याका नअबुदु, हम तेरी ही इबादत करते हैं, और दूसरी तरफ हम अल्लाह ताला से दरख्वास्त करते हैं वह इय्याका नस्ताईन, कि हम आप ही से मदद चाहते हैं। अब यहाँ पे इय्याका नअबुदु, इय्या जो है इसके मानी है कि ही, किसी और की नहीं। जैसे आप देखें कि आप जो है किसी से कहें कि मैं सिर्फ आप ही से मोहब्बत करती हूँ, अब यहाँ पे हम इस बात का इकरार करते हैं जो मुसलमान है कि हम ऐ अल्लाह सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं। तो ये आयत जो है ये शिर्क जो है उसको, शिर्क को खत्म करती है, उसकी जड़ को काटती है, शिर्क की नफी करती है कि अल्लाह हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं। इबादत का लफ्ज जो है अरबी जबान में तीन मानों में इस्तेमाल होता है, एक है पूजा वर्शिप परस्तिश, दूसरे मानी है अतात। अतात के मानी क्या होते हैं, ओबीडियंट बनना, कहना मानना, फर्मा बरदारी इख्तियार करना, ये दूसरे मानी है। और तीसरे मानी है बंदगी, ऐसी अतात करना कि सर्वेंट बन जाए, फिर गुलाम, गुलामी। तो इबादत का लफ्ज अरबी जबान में तीन मानों में इस्तेमाल होता है। जैसे एक होता है ना पूजा पाठ के, मसलन जो है जैसे मंदिरों पे हिंदू जो है वो जाकर पूजा पाठ करके आ जाते हैं, फिर अमली जिंदगी में जो है वो और कोई काम नहीं है जैसे करना। इसी तरह बाज़ औक़ात इंसान जो है वो ये समझता है कि बस सिर्फ जाके रुकू सजदा करना है, नमाज पढ़नी है, उसके बाद मैं फारिग, नहीं। तो नमाज भी पढ़नी है, पूजा और परस्तिश भी करनी है, और उसके साथ साथ अल्लाह की अतात करनी है, नमाज पढ़ने के बाद आम जिंदगी में फिर जो अल्लाह ताला ने कहा है वो करना है। और अतात कैसे करनी है, ऐसे नहीं कि कोई बीमार हो गया, कोई मुसीबत आ गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, या कभी कभार रमजान में जो है वो नमाजें पढ़ ली, कुरान पढ़ लिया, या ये कि हज पर गए तब हमने जो है तौबा कर ली, या उमरे पे गए तो तौबा कर ली, अस्तगफार कर लिया, नमाजें पढ़ ली, फिर उसके बाद बाकी महीने और जिंदगी के बाकी दिन फारिग, नहीं। ऐसी इबादत के सर्वेंट, गुलामी, के सारी जिंदगी अल्लाह की बंदगी करनी है। इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह बहुत पाए के स्कॉलर गुजरे हैं, एक दफा बाजार गए एक गुलाम को खरीदने के लिए। जब गुलाम को खरीदने के लिए गए तो उससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, उसने कहा कि हजरत आप जिस नाम से चाहें पुकारें। फिर पूछा कि तुम लोगे क्या, कहने लगा कि एक गुलाम की क्या हकीकत है, आप जो भी दे दें। फिर पूछा कि तुम खाओगे क्या, पहनोगे क्या, तो उसने कहा कि हजरत मैं तो एक गुलाम हूं और मतलब मेरी तो कुछ भी हैसियत और हकीकत नहीं है, तो मैं क्या कोई डिमांड रखूं, क्या कोई बात करूं। ये बात सुनकर इब्राहिम बिन अदम रोने लगे, कहने लगे कि अफसोस ए इब्राहिम बिन अदम, तुझे तो अल्लाह की गुलामी और नौकरी नाई जैसी इस गुलाम को आती है कि अपने मालिक की कैसे नौकरी करनी है, काश के हम सबको जो है वो अल्लाह की गुलामी आ जाए। अब आप देखें कि यहाँ पे हम जो है खुद इकरार कर रहे हैं इय्याका नअबुदु, कि हम तेरी ही इबादत करते हैं। अब आप देखें कि हमारी नमाज भी मुकम्मल नहीं होती जब तक कि ये सूरत फातिहा जो है वो इसकी तिलावत ना की जाए, और हर मुसलमान जो है वो सूरत फातिहा की तिलावत करता है। और सूरत फातिहा की तिलावत जो है आप कितनी दफा करते हैं, यानी अगर आप जो है वो फर्ज नमाज की रक्तों का ही जायजा ले लें तो 17 बार कम से कम आप पढ़ते हैं, और अगर आप सुन्नतें और नफल जो है और वो भी पढ़ें, उनको भी शुमार करें, तो फिर इसकी तादाद और बढ़ जाती है। और हम हर नमाज की हर रकत में अल्लाह से ये वादा करते हैं कि अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं। और ये नाबुदु का जो सीगा है, ये जो वर्ब इस्तेमाल किया गया है, इसके दो मानी है, हम तेरी इबादत करते हैं और करेंगे, आज भी करते हैं और कल भी करेंगे, यानी प्रेजेंट हाल में भी और फिर फ्यूचर में भी। तो हम सबको अपना अपना जायजा लेना चाहिए कि ये वादा करके जाय नमाज से जब उतर आते हैं उसके बाद फिर क्या करते हैं, कहीं रिश्वत है, कहीं चोरी है, कहीं झूठ है, कहीं बैक बाइटिंग है, गीबत है, कहीं चुगली है, और कहीं जो है वो बीवी शोहर का हक अदा नहीं करती, कहीं शोहर जो है वो बीवी का हक अदा नहीं करता, कहीं बच्चों के साथ ज्यादती की जाती है, कहीं पड़ोसियों के हकूक अदा नहीं किए जाते, कहीं रिश्तेदारों के, और कहीं वालदैन जो है उनको अपने लिए फिर बोझ समझा जाता है। तो अपना अपना सब मुहासबा करें कि इय्याका नाबुदु, क्या वाकई जो अल्लाह ने कानून दिया है कि मैं अल्लाह का भी हक अदा करती हूँ और साथ ही अल्लाह के बंदों का। और आयत का दूसरा हिस्सा है वह इय्याका नस्तईन, और तुझी से मदद मांगते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं। इसका मतलब क्या है कि अल्लाह से हमारा ताल्लुक सिर्फ इबादत ही का नहीं बल्कि मदद मांगने का ताल्लुक भी है। और ये जो इस्तेआनत है, जो नस्ताईन है कि हम ए अल्लाह तुझसे मदद मांगते हैं, इसके दो मानी हैं। एक मानी तो ये है कि हर तरह का नफा जो है ना हमें अल्लाह ही से चाहिए, और दूसरे मानी क्या है कि हर तरह के नुकसान से हमें अल्लाह ही बचा सकता है। तो ये जब दोनों मानी मुराद होंगे तो मदद मांगने के मानी जो है फिर मुकम्मल होते हैं। तो हम अल्लाह से ये दुआ करते हैं कि ए अल्लाह तू जो है जितनी भी नुकसान देने वाली चीजें हैं तू हमें उनसे बचा ले। मसलन अगर हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और फिर जाकर ये कहते हैं कि डॉक्टर हमें आपकी मदद चाहिए, तो या हमें हमारी इस बीमारी का जो है इसके लिए आप इलाज बताइए या दवा दे दीजिए, तो इसके दरअसल मानी क्या है? इसके मानी ये हैं कि अल्लाह ही ने डॉक्टर को जो है इल्म दिया, और अल्लाह ही ने उसमें जो है वो उसके उसका जो इल्म है और उसका जो हाथ है उसमें शिफा रखी है। तो अगर इस तरह हम किसी से बात करते हैं तो ये गलत नहीं है इस तरह की मदद जो है, क्योंकि अल्लाह ही ने असबाब पैदा किए हैं, और असबाब के तहत एक दूसरे से मदद चाहना ये शिर्क नहीं है। लेकिन शिर्क क्या है, जैसे अल्लाह के सिवा दूसरों से कहा जाए कि अल्लाह जो है अल्लाह के सिवा कोई और जो है वो बेटा देता है, हालांकि ये अल्लाह ही दे सकता है, या ये कि जैसे अल्लाह ही है जो सुनता है, समी है, बसीर है, वो देखता है, तो जो अल्लाह की सिफात है ये किसी और को भी देना जो है ना ये दरअसल शिर्क है। जैसे अगर कोई कहे कि अली मुश्किल कुशा तो ये अल्लाह ही है, जैसे दाता गंज बख्श तो खजाने देने वाला तो अल्लाह ही है, जैसे कहते हैं किसी किसी का बेटा पैदा हुआ तो वो कहने लगा कि पीर देता, कि पीर ने मुझे ये बेटा दिया है, तो असल में अल्लाह देता, अल्लाह ने बेटा दिया है। वह इय्याका नस्तईन, हम तुझी से मदद मांगते हैं, हर तरह की मदद के मोहताज हम अल्लाह से हैं। और फिर असल में जो हमें मदद चाहिए वो क्या है, एहदिनस सिरात अल मुस्तकीम, दिखा हमको सिराते मुस्तकीम। अब आप देखिए कि यहां पर जो है नस्ताइन के का भी आप लफ्ज इस तरह से याद कर लें कि असल में इसका रूट है ऐन व नून औन, और औन के मानी क्या होते हैं, मदद के, मददगार। और इसी से एयानत भी है, जैसे आप किसी को जब पैसे देते हैं तो पैसों से मदद करते हैं, इसी से ताउन का लफ्ज है, ताउन किसी की हेल्प करना। तो नस्ताइन आप देखें वैसे मुश्किल सा लफ्ज लग रहा है ना, लेकिन जब आपको इसका मादा पता चल गया तो इसका याद करना आपके लिए आसान हो गया। ऐन व नून रूट है और इसके मानी है मदद चाहना, और नस्ताइन हम मदद चाहते हैं। अब सबसे बड़ी मदद हमें क्या चाहिए, और वो है कि अल्लाह ताला हमें सिराते मुस्तकीम दे दे, ए दीन सिरात अल मुस्तकीम। और सिरात जो है स्वाद रात, तो इसका रूट है ये लंबी और तेज धार तलवार को कहते हैं, लंबी और तेज धार तलवार। इसी तरह आप देखें कि पुल सिरात का लफ्ज भी आपने सुना होगा, पुल सिरात यानी ऐसा ब्रिज जो जहन्नुम पर बनाया गया है जहन्नुम को क्रॉस करने के लिए, और वो तलवार से तेज और बाल से बारीक होगा। ये ऐसा रास्ता होगा जिसे बहुत ही एहतियात से तय करना होगा, क्योंकि जहन्नुम जो है वो पूरी हौलनाकियों के साथ जो है वो उसकी नीचे उसकी आग जो है वो दहक रही है, और उसके आंकड़े हैं जो के ऊपर हैं, और वो जहन्नमियों को जो है वो अपने अंदर खींच लेंगे। तो इस तरह सिरात ऐसे रास्ते को कहते हैं जो बहुत ही तेज है, बारीक है, और बाल से भी बारीक है और तलवार से तेज है। और अब आप देखें कि यहाँ पे हमें हमने अल्लाह से दुआ मांगी कि अल्लाह हमें सिराते मुस्तकीम दिखा दे, और अल मुस्तकीम का लफ्ज काफ व मीम से निकला है, कौम, और इसके मानी है खड़ा होना, कायम होना। जैसे कौम के मानी क्या होते हैं कि अफराद जब कुछ खड़े हो जाते हैं तो उसको कोई मिशन लेकर, तो एक कौम। इसी तरह आप कहती हैं नमाज, जैसे आपने कभी नमाज बाद जमात पढ़ी हो तो वहां पे होता है कि अकामत, उसका रूप भी काफ व मीम है, क्योंकि नमाज खड़ी होने का ऐलान होता है। इसी तरह अल मुस्तकीम, कि ऐसा रास्ता जो कि जो है वो कायम है, सीधा है, सीधा रास्ता हम सबको दिखा दे। और सिराते मुस्तकीम की दुआ हमें मांगनी बताई गई है, और ये दुआ जो है क्यों हमें बताई गई है कि इसलिए कि मोमिन इस बात का मोहताज है कि वो अल्लाह से हदायत का सवाल करता रहे, अल्लाह से सिराते मुस्तकीम की दरख्वास्त करता रहे। और इंसान जो है उसको ये बात बताई गई कि आप अल्लाह से मांगे तो सिराते मुस्तकीम मांगे, क्योंकि इंसान का जो दिल है वो अल्लाह की दो उंगलियों के दरमियान है। और एक मुसलमान को अल्लाह से ये दुआ मांगते रहना चाहिए कि अल्लाह मुझे आखिरी जिंदगी के सांस तक जो है वो मुसलमान रखना, और जब मैं मरूं तो मुझे कलमा नसीब हो, और पूरी जिंदगी जो है पूरी जिंदगी में मैं ईमान और अमले स्वाले जो है उसके संग सफर तय करूं। क्योंकि रब्बना ला तुज़िग़ कुलूबना बाद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा, ये दुआ भी मांगना कि मैं आजकल का आप देखें जमाना देखें तो हर तरफ बेहयाई है, गुनाह है, शैतानियत है, शिर्क है, बुरी सोहबत है, और बुराइयां जो हैं अच्छाई के रूप में सामने आती हैं बड़ी खूबसूरत बनकर। और ऐसे में एक शख्स का सिराते मुस्तकीम पर कायम रहना जो है वो इतना आसान नहीं है। तो इसके लिए हमें अल्लाह ताला ने ये दुआ सिखाई है कि अल्लाह तू सारी कायनात का रब, सारी ताकतें तेरे हाथ में, सारी नेमतों का तू अकेला ही मालिक, हम अपनी हाजतें तेरी ही सामने जो है वो रखते हैं, तेरी ही तरफ रुजू करते हैं, हमारा हमारे हाथ तेरे सामने खुले हुए हैं, हमारा दामन तेरे सामने फैला हुआ है, और तेरी मदद पर हमें एतमाद है, और हम अपनी दरखास्त को तेरी खिदमत में पेश करते हैं। और हमारी दरखास्त क्या है कि अल्लाह तू हमें सीधा रास्ता दिखा दे। और कौन सा सीधा रास्ता, क्योंकि आप देखें कि अस्सिरातल मुस्तकीम, ये अलिफ लाम मीम जो है ये खास कर देता है कि सीधा रास्ता कौन सा, सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, रास्ता उन लोगों का जिन पर तूने इनाम किया, अनअमता, नून आयन मीम, ये लफ्ज जो है नेम, अच्छी हालत आराम आसाइश को कहते हैं, जैसे बाज लोग नईमा नाम रखते हैं, नईम नेमतें, और नेमत लफ्ज इस्म जिन्स है, वाहिद जमा मुज़क्कर मोनस हर तरह इस्तेमाल किया जाता है। अब हम ये दुआ मांग रहे हैं, अल्लाह ने हमें ये सिखाया कि सिरात अल्लज़ीना, रास्ता उन लोगों का, और ये रास्ता बड़ा बारीक है, ये रास्ता बड़ा मुश्किल है, ये रास्ता जो है जैसे तलवार की तरह तेज और बाल से बारीक। और आपको पता है जैसे कभी आप अगर कच्ची जमीनों पर गई हो जो ये देहाती इलाके हैं और उसमें पगडंडियों पर चले हों, तो आप देखेंगे उन पगडंडियों पर बारीक से छोटे से रास्ते पर चलना कितना मुश्किल होता है। तो अब आप यानी रास्ता उन लोगों का कि वो उन रास्तों पर चले, अनअमता अलैहिम, पर जिन पर तूने अपना इनाम किया। अब यहाँ पे अनअमता अलैहिम से मुराद कौन लोग हैं, इस सिलसिले में जो है वो सूरत निसा की आयत 69 को आप याद रखें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिन लोगों पर इनाम किया ये चार किस्म के लोग हैं। मुनम अलैह का ग्रोह, नंबर एक अंबिया, नंबर दो शोहदा, नंबर तीन सिद्दीकीन, और नंबर चार सालिहीन। सूरत अन्निसा की आयत 69 69 नंबर आयत में जो है अल्लाह ताला कहते हैं कि मैंने चार किस्म के लोगों पर अपना इनाम किया है जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की अताअत करते हैं, तो कयामत के दिन अल्लाह ताला उनको इन लोगों के साथ कर देगा। और ये चार कौन है, नबी अंबिया, और नबी कौन है जो पूरी इंसानों में सबसे दी बेस्ट, फिर उसके बाद सिद्दीकीन, सच्चे अल्लाह पर ईमान लाने में और अमले सवाले करने में सिद्दीकीन, नंबर तीन शोहदा जिन्होंने अपनी जानों के नजराने पेश कर दिए, कुछ भी बचा कर ना रखा, और नंबर चार सालिहीन, सालिहीन सुलह से है, नेकी से है। और खुद ही अल्लाह ताला कहते हैं हसुना उलाइका रफीका, और इनकी रफाकत इनकी सोहबत कितनी ही अच्छी है। तो मेरी प्यारी बहनों, इस आयत में हमें ये तरगीब दी गई है, ये सिखाया गया है कि अल्लाह से हम दुआ करें कि अल्लाह तू हमें इनाम याफ्ता लोगों में शामिल कर ले। تو انعام یافتہ لوگ جو ہیں یہ اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ساری زندگیاں اللہ کی اطاعت کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی، اور اللہ کا پسندیدہ راستہ جو ہے وہ راستہ ہے جس پر انبیاء چلے، شہداء چلے، صالحین چلے، اور اس کے بعد جو ہے وہ صدیقین چلے. اور یہ جو صراط مستقیم ہے یہ ہے تو عام، لیکن اس پر چلنا اتنا آسان نہیں ہے. اور یہ جو ہدایت ہے، ہدایت کے بھی کچھ درجے ہیں. اس میں سے ہدایت کا پہلا درجہ یہ ہے کہ کسی کو جو ہے ایک راستہ جو ہے دکھا دیا جائے، کسی کی رہنمائی کر دی جائے. جیسے آپ دیکھیں کہ یہ جو نباتات ہیں، حیوانات ہیں، اور کائنات کے اندر جتنی مخلوقات ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہوئی ہے. یہ بے جان اور بے شعور چیزیں، ان کے پاس بھی ہدایت ہے. اب آپ دیکھیں کہ جانور بھی کھانا کھاتے ہیں، اپنی نسل کو جاری رکھتے ہیں، لیکن ان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے. کائنات کا ذرہ ذرہ جو ہے، ہر ایک جو ہے کچھ نہ کچھ ان کا ایک کام ہے. بے جان ہیں وہ، بے شعور ہیں، جانور ہیں، ان کو کچھ سمجھ ہے، لیکن یہ کہ یہ بھی ہدایت کا ایک درجہ ہے. اسی طرح یہ پتے، یہ ہوائیں، یہ بارش، یہ آسمان، یہ سورج، یہ چاند، یہ بھی جو ہے وہ اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں آتا کل شعین خلا کہ سما ہدا. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ سورۃ اعلیٰ میں فرماتے ہیں سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوا والذی قدر فہدا. تو یہ ایک عام ہدایت ہے. اب دوسری ہدایت کا جو درجہ ہے وہ خاص درجہ ہے، اور یہ کن کے لیے؟ جیسے انسان، جن. اور جو ہے یہ ہدایت اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور آسمانی کتابوں کے ذریعے بھیجی ہے. تو یہ جو دوسرا درجہ ہے، جو اس ہدایت کو قبول کر لے تو مومن اور مسلم بن جاتا ہے. اور پھر جو تیسرا درجہ ہے، یہ خاص الخواص کا درجہ ہے، یہ بیسٹ لوگوں کا درجہ ہے، یہ ہے مومنین اور متقین کا. اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ احسان کے درجے کی نیکی کرتے ہیں، جن کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی فی جنتی. اب آپ سب کو یہ سوچنا ہے کہ میں نے ہدایت کا کون سا درجہ حاصل کرنا ہے. ایک تو جانور، پتھر، درخت وغیرہ. درخت بھی پھلتے پھولتے ہیں، جانور بھی زندگی گزارتے ہیں، نسل جاری رکھتے ہیں، چونٹی ہے، چڑیا ہے، پرندے ہیں، وہ بھی اپنا گھر بناتے ہیں، گھونسلہ اور نسل جاری رکھتے ہیں، لیکن ان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا. اور انسان جو ہے اس کی زندگی کا ایک مقصد ہے، وہ کھانے کے لیے نہیں جیتا، وہ نسل جاری کرنے کے لیے نہیں، اپنی نسل جو ہے بڑھانے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کی بندگی کے لیے. زندگی پھر رہی تھی بھٹکتی ہوئی، میری خانہ بدوشی کو گھر مل گیا. تو ہم جو ہیں اللہ سے جو ہدایت مانگ رہے ہیں، وہ کون سی ہدایت؟ جو خاص الخواص کی ہدایت ہے، جو اللہ کے پسندیدہ لوگوں کی ہدایت ہے، جن پر اللہ نے انعام کیا. ہم سب کو اپنی زندگی کا جائزہ بھی لینا چاہیے، اور ساتھ ساتھ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اپنے انعام یافتہ لوگوں کی فہرست میں شامل کر لے. اور ساری زندگی اس کی فکر کرنی چاہیے، اب تک کی زندگی جیسے بھی گزری گزر گئی، اپنے گناہوں پر اللہ سے استغفار کریں، اور اس کے ساتھ جو ہے ہدایت یافتہ لوگوں کی فہرست میں شامل ہونے کی کوشش کریں، اور ہدایت کا بھی اعلیٰ درجہ. اور پھر دوسرا گروہ ہے غیر المغضوبی، کہ جن پر تیرا غضب ہوا، جن پر تیری ناراضگی ہوئی. اس سلسلے میں مفسرین یہ کہتے ہیں کہ غیر المغضوب سے مراد جو ہیں یہ یہودی ہیں. اس سلسلے میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیر المغضوب سے مراد جو ہے یہ یہودی ہیں، جو گناہ کے کاموں پر دلیر ہو گئے تھے، اور پھر اللہ نے ان پر اپنا عذاب نازل کیا. اور پھر تیسرا گروہ ہے ولد دوالین، اور نہ کہ جن پر تو نے جو ہے وہ، نہ ان لوگوں پر جو کہ بھٹکے ہوئے ہیں، دوالین. اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے مراد عیسائی ہیں، کیونکہ عیسائی جو ہیں ایک طرف جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ اللہ کا بیٹا کہنے لگے، اور دوسری طرف جو ہے انہوں نے رہبانیت اختیار کر لی اور اللہ کا بتایا ہوا دین جو تھا وہ اس کو چھوڑ دیا. تو المغضوب علیہم سے مراد یہودی، اور الضالین سے مراد نصارہ. تو اب یہاں پر جو ہے تین قسم کے گروہوں کا ذکر ہے. ایک ہے انعمتا علیہم، اس کی मुसलमानों को बताया गया कि इसमें शामिल होने की दुआ करनी चाहिए। गैरिल मगदूबी अलमगदूब का रूट गैन दुआ बा है, अलगदब गुस्सा नाराजगी को कहते हैं। कहा कि इससे बचने की कोशिश भी करो और दुआ भी करो। और ये यहूदी हैं जो हीलो हुज्जत और बाल की खाल उधेड़ना और हजरत उजैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा करार देते थे। और तीसरा ग्रोह जो है वो अद्दालीन का है और इससे मुराद जो है ये ईसाई हैं जो कि जिन्होंने हक को नहीं पहचाना। तो अब आप देख लें कि दो किस्म के जो ग्रोह हैं इनसे बचना है और एक किस्म का जो ग्रोह है जो कि अल्लाह के पसंदीदा लोगों का इसमें शामिल होना है। ये है सूरत अल फातिहा। और सूरत अल फातिहा में हमने जो है वो तीन खास मजमून पढ़े। नंबर एक तौहीद का, नंबर दो जो है वो रिसालत का, यहाँ पे कि अनअमत अलैहिम जिन पर तूने इनाम किया उनमें अंबिया का जिक्र भी है, और सिरात मुस्तकीम पर जो चले वो अंबिया थे और उन्होंने वो रास्ता जो है वो बताया, और तीसरा हमने अकीदा पढ़ा है मालिक यौम दिन कयामत के दिन का कि हमें कयामत के दिन की तैयारी करनी है। और सूरत अल फातिहा में हमें दुआ मांगने के आदाब सिखाए गए हैं कि अल्लाह से जब मांगे तो कैसे मांगे, अल्लाह की हमदो सना करें, अल्लाह की तारीफ करें और फिर जो है वो अल्लाह के सामने अपनी दरख्वास्त को पेश करें। दुनिया में भी जैसे आपको कभी कोई चीज चाहिए होती है किसी को तो आप फोन करते ही अपनी चीज नहीं मांगती बल्कि खैर खैरियत सब ठीक है आपके शोहर बच्चे फिर आप अपनी बात जो है वो सामने रखती हैं। तो यहाँ पे भी हमें एक सलीका अदब और तहजीब सिखाई गई है, तमीज सिखाई गई है कि अल्लाह से भी मांगे तो पहले अल्लाह की हमदो सना बयान की जाए फिर अल्लाह से जो है वो मांगा जाए। और मांगने में भी गो के दुनिया की जरूरत की हर चीज मांगनी है, हत्ता कि जूते का तस्मा भी टूट जाए तो हम अल्लाह से मांगे, लेकिन खास तौर पर जिसे हमें हर वक्त नहीं भूलना चाहिए वो है सिरात अल मुस्तकीम। और इस सिलसिले में ये हदीस भी आप सुन लीजिए कि अबू हुरैरा रजी अल्लाह कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब इमाम आमीन कहे तो तुम भी जो है वो आमीन कहो, इसलिए कि जिसकी आमीन फरिश्तों की आमीन से मिल जाएगी इसके तमाम सबका गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। इसे बुखारी और मुस्लिम ने रवायत किया है। और सूरत अल बकरा जो सात मुख्तसर छोटी सी आयतों पर मुश्तमिल है, सूरत अल बकरा की अहमियत और फजीलत के लिहाज से ये बात याद रखिएगा कि इसके जितने नाम सूरत अल बकरा के है ना किसी और सूरत के इतने नाम नहीं है। इसका एक नाम जो है वो उम्मुल कुरान है, और उम्मुल कुरान के मानी क्या है कि इसमें तमाम कुरान के जो मजामीन है उसका निचोड़ जो है वो बयान किया गया है। सूरत अल बकरा में जो है वो तमाम कुरान के जो मजामीन है उसके बुनियादी उसूलों की तरफ रहनुमाई दी गई है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला ने तौरात और इंजील में उम्मुल कुरान यानी सूरत फातिहा जैसी सूरत नहीं उतारी। फिर इसका एक नाम जो है वो सबा मसानी भी है। सबा मसानी ये सूरत अल हिजर की आयत 87 में फरमाया वलकद आतेना का सबा मिनल मसानी वल कुरान अल अजीम कि हमने तुम्हें जो है सात बार बार दोहराई जाने वाली आयतें दी और कुरान अजीम। और मुफस्सरीन कहते हैं कि सबा मसानी से मुराद के इसकी सात आयतें हैं जिसमें बिस्मिल्लाह भी शामिल है और ये बार बार जो है ये दोहराई जाती है हर नमाज की रकत में। फिर इसी तरह जो है वो सूरत अल फातिहा जो है इसका एक और नाम है और ये है इसका नाम अल कुरानुल अजीम। अल कुरानुल अजीम मुस्नद अहमद की रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी से कहा हजरत अबू सईद से कि मैं तुझे मस्जिद से निकलने से पहले कुरान करीम की एक अजीम तरीन सूरत सिखाऊंगा। फिर आपने उन्हें सूरत फातिहा की तालीम दी। इस हदीस को इमाम बुखारी अबू दाऊद निसाई और इब्ने माजा ने रवायत किया है। फिर इसी तरह इसका हमें एक और नाम मिलता है और वो नाम है इसका अशिफा अर्रुकिया दम करने वाली झाड़ फूंक करने वाली। एक सहाबी थे ये हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह अन्हु रवायत करते हैं कि और इसे इमाम बुखारी ने जो उनकी सनद है कि किसी को जो है वो सांप ने डस लिया था और उस वक्त जो है सहाबा जो थे उन्होंने इस सूरत को पढ़कर दम किया तो जहर का जो असर था जो सांप का और कीड़े का असर जो था वो खत्म हो गया। तो इससे ये बात पता चलती है कि ये सूरत जो है ये जो है वो शिफा भी है, रुकिया है। और अगर किसी के सर में दर्द है, जिस्म के किसी हिस्से में दर्द है, कहीं कोई तकलीफ है, कोई हार्ट पेशेंट है, कुछ भी है, तो इसको पढ़कर अपने जिस्म पर जो है, हाथों पे फूंक मार के अपने जिस्म पर जो है हाथों को फेरना चाहिए। फिर इसका एक और नाम भी है, और वो इसका नाम है असलात। इसे सही मुस्लिम ने रवायत किया है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, यह हदीसे कुदसी है, कसम तो सलात बैनी व बैना अब्दी, कि मैंने सलात यानी नमाज को, मुराद है अल्फातिहा, इसको अपने और अपने बंदे के दरमियान तकसीम कर दिया है, जिसका आधा हिस्सा अल्लाह ताला की हमदो सना, रहमत और रबूबियत और अदलो बादशाहत के मुतालिक है, और आधे में दुआएं हैं, दरख्वास्तें हैं। जैसे आप देख लें कि मैल की योमिद्दीन तक जो है वो अल्लाह की हमदो सना है, और उसके बाद जो है इया का नाबदू में भी अल्लाह की तारीफ और अल्लाह की इबादत का इकरार है, व इया का नस्ताइन से जो है वो अल्लाह की अल्लाह से दरख्वास्त जो है वो शुरू हो जाती है। तो ये क्या है सूरत? ये वो सूरत है कि जिसमें जो है वो इंसान अल्लाह की हमदो सना भी बयान करता है और अल्लाह के सामने अपनी जरूरतों को पेश भी करता है। सूरत अल फातिहा की फजीलत के बारे में यह हदीस बहुत अहम है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने नमाज पढ़ी और इसमें सूरत फातिहा ना पढ़ी तो उसकी नमाज नाकस होगी। तो आप ये बात याद रखिए कि सूरत अल फातिहा के बाद के बगैर सूरत अल फातिहा के बगैर नमाज भी मुकम्मल नहीं होती। फिर इसी तरह एक और बहुत ही अहम हदीस है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पे फरमाया कि इसे अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ने रवायत करते हैं कि एक दिन जिब्राइल अलैहि सलाम अल्लाह एक दिन जिब्राइल अलैहि सलाम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठे हुए थे कि उन्होंने अपने ऊपर एक जोरदार आवाज सुनी। उन्होंने अपना सर उठाया, फिर फरमाया यह आसमान का एक दरवाजा है जो आज से पहले कभी नहीं खुला। फिर फरमाया ये एक फरिश्ता है जो आज से पहले जमीन पर कभी नाजिल नहीं हुआ। फिर इस फरिश्ते ने आपको सलाम किया और दो नूरों की खुशखबरी दी और कहा ये दो नूर आप ही को दिए जा रहे हैं, आपसे पहले किसी नबी को नहीं दिए गए, एक सूरत फातिहा और दूसरी सूरत अल बकरा की आखिरी आयात। आप जब कभी इन दोनों से कोई कलमा तिलावत करेंगे तो आपकी तलब की हुई चीज आपको जरूर दी जाएगी। तो सूरत अल फातिहा जिससे कुरान की इब्तदा होती है, ये कुरान को खोलने वाली सूरत है और इसके बहुत से नाम हैं, और इन तमाम नामों की फजीलत से ये बात पता चलती है कि हमें सूरत फातिहा से जो है ये सूरत फातिहा को अच्छे से समझना चाहिए और अल्लाह से दरख्वास्त करनी चाहिए, अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमें सबको सीधा रास्ता दिखा दे और अपने नेक और इनाम याफ्ता लोगों में शामिल कर ले। तो आइए इसी दरख्वास्त के साथ आज की इस सबक को हम खत्म करते हैं। अल्लाह ताला सूरत फातिहा के खजाने से हम सबको माला माल कर दे, इसके जो हीरे डायमंड और मोती हैं उनसे हम सबको मुजयन कर दे, और इसकी गहराई में उतर कर हमें अपनी जिंदगी के अंधेरे दूर करने वाला बना दे। और अल्लाह तू इसकी इब्तदा में हम सबकी नीयत को खालिस कर दे, हम सबके लिए आसानियां कर दे और हम सबकी मुश्किलात को दूर कर दे और कुरान के पढ़ने पढ़ाने का सफर जो है वो आसान कर दे। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउ दुआ व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदि व आलिही व सहाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक।